पृष्ठ संख्या 248। वसंत ऋतु। वसंत निराला के लिए सुख, उल्लास, समृद्धि, सौंदर्य की रंगारंग ऋतु है। वर्षा के बाद वसंत का ही सबसे अधिक चित्रण उन्होंने किया है। उनके सारे संग्रहों में ढूंढने पर वसंत से संबंधित लगभग 18 कविताएं प्राप्त होती हैं। इन कविताओं के अतिरिक्त अपने कई दूसरे गीतों और कविताओं में भी निराला ने वसंत ऋतु से अनेक बिंब लिए हैं। ऋतु संबंधी दूसरी कविताओं की तरह ही वसंत की कविताएं भी उनके पहले संग्रहों से लेकर गीत गुंज तक में बिखरी पड़ी हैं। सांध्य काकली में आकर वसंत तिरोहित हो गया है। सिर्फ वर्षा और शिशिर ऋतुएं रह गई हैं। वसंत ऋतु निराला की रचनात्मक क्षमता के निर्बाध प्रवाह की इच्छा की अभिव्यक्ति से शुरू होती है। अनामिका के एक गीत वसंत की परी के प्रति में वसंत के माध्यम से इसी रचनात्मकता का आवाहन कवि ने किया है। उसे अपनी जूही की कली, बेला और परिमल की रचना याद आती हैं। इसी तरह का आवाहन परिमल की कविता वसंत समीर और वासंती में भी अभिव्यक्त हुआ है। सुख, सौंदर्य और विकास की आकांक्षा से कवि अभिभूत है और वसंत की प्रथम अनुभूति उसे एक विचित्र प्रकार की तन्मयता से भर देती है। निराला के मन को निरंतर पीड़ित करने वाला अवसाद, उनके अंदर की खिन्नता, निराशा और गहरी उदासी, मृत्यु की करुण अनुभूति, वसंत के निर्बाध उल्लास में तिरोहित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी वसंत की श्रेष्ठतम कविता अंत की इस प्रखर अनुभूति से ही आरंभ होती है। पृष्ठ संख्या 249। अभी न होगा मेरा अंत, कभी कभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ए पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत, सहर्ष सींच दूंगा मैं मेरे जीवन का, जब है यह प्रथम चरण, इससे कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे वह बालक मन, मेरी ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत की सर्वग्रासी छाया को कवि ने यह ललकारा है। वह छाया कहीं न कहीं बहुत गहरे निराला में वर्तमान है और उन्हें लेकर मथती रहती है। कहीं पीछे हम इस बात का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार मृत्यु का सर्वग्रासी आतंक हर महान कवि की रचनात्मक प्रेरणा के मूल में निहित होता है, चाहे वह गालिब हों, रविंद्रनाथ या निराला। यहाँ भी निराला अपने उल्लास की विजय यानी पृष्ठ संख्या 250 अनुभूति को अंत की छाया की अस्वीकृति से शुरू करते हैं। चाहे अस्वीकृति ही क्यों न हो, अगर वह अंत है तभी तो उसकी अस्वीकृति भी है। फिर आगे चलकर निराला अपने जीवन और व्यक्तित्व के उसी प्रिय बिंब को कविता में अवतरित करते हैं, वृक्ष और वन के बिंब को। जूही की कली का वही चिरपरिचित बिंब फिर उभर कर सामने आता है, जब कवि निद्रित कलियों पर अपना स्वप्न मृदु कर फेरने की बात करता है। फूलों की अलसाई हुई जीवन इच्छा को जहाँ एक ओर खींचने और उससे अपने जीवन को समृद्ध करने का प्रसंग आया है, वहीं निराला की यह आकांक्षा एक तरफा स्वार्थ पूर्ति का उदाहरण बनकर ही नहीं रह जाती, बल्कि अपने जीवन के अमृत तत्व से सींचने का भी प्रसंग आया है। यह दोहरा प्रतिदान निराला के काव्य मूल्य की विशेषता है। अगर वह लेते हैं, अगर वह फूलों जैसी लालसा के आकांक्षी हैं, तो अपने जीवन के अमृत रस से उन्हें सींचने के लिए भी तैयार हैं। जीवन के प्रथम चरण में अंत कैसा? अभी तो मेरे उल्लास, मेरे समृद्ध जीवन, मेरी रंगारंग रचनाओं का प्रारंभ है। अभी तो मेरे मन का अनंत संगीत अविकसित है, वह धीरे धीरे खुलेगा और फिर सारी दिशाएं उस संगीत की अनगूंज से भर जाएंगी। मेरे अमृत रस से सिंचित होकर सारा वन प्रदेश लहलहा उठेगा। यहाँ भी जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, निराला वसंत का कोई विवरणात्मक चित्र नहीं प्रस्तुत करते। यहाँ भी ऋतु उनके बाहर कहीं नहीं है, बसंत उनके भीतर ही है। उनका समग्र जगमगाता हुआ उल्लास, उनका फूटता और लहलहाता रचना यौवन, वसंत की सारी बिंब मालाएं उनके भीतर से होकर ही बाहर आती हैं और फिर उनके लहलहाते जीवन वन में समा जाती हैं। अंत की यह करुण अनुभूति उनके एक दूसरे वसंत गीत में भी अभिव्यक्त है, लेकिन यहाँ वसंत के आगमन का चित्र नहीं है, वसंत के जाने का है। और बावजूद इसके कि वसंत आया था, फूलों से, उल्लास से, रंगमयता से रिक्त रह जाने का चित्र है। सुमन भर ना लिए सखी, हर्ष हरण हृदय नहीं निर्दय क्या। वैसे यह पूरी की पूरी कविता परंपरागत शैली में है। इसकी जो विशेषता इसे परंपरा से अलग करती है, वह वसंत के जाने पर रिक्तता की अनुभूति ही है। लेकिन इन दो एक गीतों के अतिरिक्त वसंत की सारी कविताएं उल्लास, समृद्धि और सुख की आकांक्षा से भरपूर हैं। प्रकृति एक आदिम समृद्धि के स्रोत के रूप में पृष्ठ संख्या 251 चित्रित हुई है। कवि उसकी भाव संपदा पर निछावर है, लुटा हुआ सा है। कहीं वह बसंत को परी, कहीं नवयौवना स्त्री, कहीं प्रेमिका और कहीं ऋतु श्रृंगार को धारण कर आने वाली संपूर्ण शोभा के रूप में चित्रित किया है। सौंदर्य के इस अंकन में शब्द गीति का अद्भुत संयोग और बिंबों की नई कल्पनाओं का भरपूर प्रसार देखने को मिलता है। वही हृदय हर प्रणय समीरण, छोर छोर नभ ओर उड़ा मन, रूप राशि जागी जगती तन, खुले नयन भाए। यहाँ भी हवा साधारण वसंत की हवा नहीं है, बल्कि प्रणय की हवा है। उससे पत्तियाँ या धूल या गंध ही नहीं उड़ती, अनेक विध आकांक्षाओं को समेटे मन ही सारी आकाश में उड़कर सुगंध के रूप में छितरा गया है। धरती रूपी नवयौवना का सारा सौंदर्य निखर उठा है। इस संबंध में निराला ने अपने एक वसंत गीत की कुछ पंक्तियों की व्याख्या स्वयं प्रबंध प्रतिमा के लेख मेरे गीत और कला में किया है। वह पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। आवृत सरसी उर सरसिज उठे, केसर के केश कली के छुटे, स्वर्ण सस्य अंचल पृथ्वी का लहराया। इन पंक्तियों का सौंदर्य निराला के शब्दों में दृष्टव्य है। वसंत की प्रकृति खींची गई है। इन्वर्टेड कामा, सरसी के हृदय में ढके हुए कमल उठ आए, कली के केसर के केश छूट गए, पृथ्वी का स्वर्ण सस्यांचल लहराने लगा, सखी बसंत आ गया। इन्वर्टेड कामा बंद। सरसी, कली और पृथ्वी पर्सनिफाइड ब्रैकेट में स्त्री रूप में निर्वाचित ब्रैकेट बंद है। पहले तीनों का अलग अलग सौंदर्य देखिए। सरसी के हृदय में ढके हुए कमल उठ आए, ब्रैकेट में अश्लीलता वर्जित इंगित स्पष्ट है, सरसी नवयौवना हो गई ब्रैकेट बंद। कली कली के केसर के केश छूट गए, ब्रैकेट में स्पष्ट है, कली खुल गई ब्रैकेट बंद। यह यौवन का स्पष्टीकरण है। पुनः कली के रेणु मिश्रित बाल देख पड़ते हैं। उसका मुंह मधु की ओर है, संसार की ओर वह पीठ किए हुए है, ब्रैकेट यह उसकी पवित्रता की छवि है, ब्रैकेट बंद। पृथ्वी का सोने सा चमकता सस्यांचल लहराने लगा। इन तीनों मूर्तियों के सौंदर्योपकरण अलग अलग हैं। अब सरसी, कली और पृथ्वी को निकालकर इन्हीं उपकरणों से बनी एक वसंत प्रकट स्त्री को देखिए, पूरा रूप बन जाएगा। एक जगह कमल कुछ है, दूसरी ओर केसर केश और सस्य अंचल पृष्ठ संख्या 252 लहराता हुआ। पुनः दर्शनीय यह है कि कुचों का जिस तरह केशों के नीचे उत्पत्ति स्थान है, यहाँ भी वैसा ही प्रदर्शित हुआ है। कमल सरसी में है, कली के केसर केश ऊपर स्थल पर, और नीची से नीची होती हुई क्षेत्र भूमि में सस्यांचल लहरा रहा है। यह कला है। दृष्टव्य यह है कि निराला ने इतनी व्याख्या के बाद इसे उच्च कोटि की कला नहीं माना है। इस गहन संश्लिष्टता से पंत के कनक छाया में जब सुविशाल को भाषा की सहज संरचना के लिहाज से वह ज्यादा सशक्त रचना मानते हैं, लेकिन निराला की यह सारी व्याख्या तो गीतखंड की भाषिक संरचना के संश्लिष्टता और उसकी बिंब प्रक्रिया को समझाने की ओर है। गीत सिर्फ उतना ही नहीं है, संश्लिष्ट भाषिक संरचना से अलग उसके कथ्य की विशिष्टता और कवि की प्रगाढ़ संलग्नता ही वह तत्व हैं जो निराला के इस वसंत गीत को साहित्य के सर्वोत्तम गीतों में स्थान दिलाने में समर्थ हैं। लता मुकुल हार गंध भार भर वही पवन बंद मंद मंदतर जागी नयनों में वन यौवन की माया सखी वसंत आया। वन यौवन का समग्र आकर्षण ही वसंत का प्रमुख आकर्षण है। और यह वन यौवन कौन है? कवि हृदय, कवि मानस और कवि का संपूर्ण व्यक्तित्व या कोई वन प्रदेश? जाहिर है कि बाहरी वन प्रदेश यहाँ कहीं नहीं है, वह अंदर ही है। निविड़, विशाल, उबड़ खाबड़ लेकिन हरितिमा और फूलों से लहराता हुआ निराला का कवि व्यक्तित्व। बसंत के सबसे अधिक गीत कवि के एक अगले संग्रह अर्चना में है। आगे चलकर भी निराला वसंत के माध्यम से हमेशा सुख, उल्लास और इसी रंगमयता को ही चित्रित करते हैं। अपने भीतरी अवसाद का रंग उन्होंने बसंत पर कभी नहीं चढ़ने दिया। अपने जीवन और काव्य रचना के उत्तरार्ध में धीरे धीरे वे वसंत के तटस्थ सौंदर्य की ओर आकर्षित होते गए हैं। उत्तरार्ध से बाद की कविताओं में चित्रमयता, रंगारंगता का चित्रण बढ़ता गया है। कवि का चाकचक्य भाव वसंत के प्रति अधिक अभिव्यक्त हुआ है, साथ ही लोक धुनों की ओर उसका झुकाव अधिकाधिक बढ़ता गया है। एक ओर प्रवृत्ति प्रलक्षित होती है, संश्लिष्ट भाषिक संरचना की जगह सीधी सादी सरल शब्दावली ने ले ली है। छंद प्रयोग और बिंबों, पृष्ठ संख्या 253 के प्रयोग की दृष्टि से एक रूपता बढ़ती गई है। अर्चना, आराधना और गीत गुंज के अधिकांश वसंत गीतों में कवि ने चौपाई छंद का प्रकांता से प्रयोग किया है। एक जावक जय चरणों पर छाई, पलक पलाश डाल कलियाई, पावक पाश दिगंत बंधा है, अग जग जैसे अडग सधा है, सुषमा में सुखरूप बंधा है, नभ में नयन मुक्ति मंडलाई। दो केशर की कलकी पिचकारी, पात पात की गात संवारी, राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमोल लिए हैं, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती ज्योत उदोत उतारी, गंध पवन की धूप धवारी। तीन बोरे आम की भौरे बोले, प्रात की गात पात के तोले, सरसाई समीर मधुवन की, आँखों छवि आई आनन की, आलस दूर हुआ मन भाया, चिड़ियों ने सुख के मुख खोले। जैसा कि मैंने कहा, इन गीतों के कथ्य में एक सहज एक रूपता है। प्रकृति के पवित्र अनिंद्य सौंदर्य का अत्यंत शांत और सहज वर्णन है। कहीं सारा संसार इस सौंदर्य से विजड़ित अडग हो गया है, तो कहीं पूरा आकाश आँखों की मुक्ति। पृष्ठ संख्या 254 का प्रतीक है। कहीं वृक्ष वृक्ष का तन खुल गया है, लहलहा गया है, पत्तों पत्तों पर लालिमा और हरतिमा रच गई है, चिड़ियों ने आनंद से चहचहाना शुरू कर दिया है, मन का आलस्य, खिन्नता और उदासी दूर हो गई है, आँखों में वह मुखश्री चमक चमक उठती है। इस समृद्ध सुख उल्लास और सौंदर्य की अपारता में कवि मन उसके नानाविध रंगों, छवियों, प्रकाश रेखाओं पर मुग्ध और चकित है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उरमे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। वसंत ऋतु के सौंदर्य के प्रति गहरी तन्मयता के लिहाज से यह गीत सर्वोत्तम है। भाषा में एक अद्भुत सहजता, निखार और शांति है। मंद गंध पुष्पमाल के अतिरिक्त पूरे गीत में कहीं भी कोई सामासिक संश्लिष्ट पद योजना नहीं है। पूरा चित्र जैसे वसंत देवता का चित्र है। इतना अपार सौंदर्य जिसे आत्मसात करना कठिन है, जिसे अंगों में रचाया नहीं जा सकता, चाहे जितना रचाओ कम नहीं होता। जरा सी सांस भर लेने की देर है, बस सारे घर उस शोभा श्री से भर जाते हैं। तन मन में पंख ही पंख लग जाते हैं और सुख समृद्धि तथा उल्लास का मुक्त नीला आकाश सामने खुला होता है। यहाँ आकर कवि इस सारे सौंदर्य और उल्लास के प्रभाव को स्वयं से फिर जोड़ता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। जड़भूत पृष्ठ संख्या 255। मुग्धत्व की अप्रतिम अभिव्यक्ति यहाँ हुई है, जैसे कवि उस वसंत के रंगारंग जादू में बंध गया है। उसकी टकटकी बंधी की बंधी रह गई है। फिर दूसरे बंद में निराला तथ्य कथन पर उतर आते हैं। दूसरे बंद का अगर कोई काव्य सौंदर्य ढूंढा जा सकता है तो वह उसकी सहजता ही है। इसी तरह निराला ने अपने कुछ वसंत गीतों में लोक प्रभावों को भी ग्रहण किया है। कुछ गीत लोक प्रभाव और परंपरागत काव्य परिपाटियों काव्य उपमानों के मेल से तैयार किए गए हैं, जैसे निम्नलिखित गीत लोक प्रभावों को लेकर लिखा गया एक अनुपम गीत है। फूटे हैं आमों में बौर भौर वन वन टूटे हैं, होली मची है ठौर ठौर सभी बंधन छूटे हैं। माथे अबीर से लाल गाल सेंदूर से देखे, आँखें हुई हैं गुलाल गेरों के ढेले कूटे हैं। इसमें पहली दो पंक्तियाँ नितांत पारंपरिक हैं, लेकिन उसके बाद लोक प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित किया जा सकता है। आँखें ऐसी लाल हुई जा रही हैं जैसे गेरू के ढेले कूट दिए गए हों। यह अभिव्यक्ति अत्यंत सुंदर और सुघड़ बन पड़ी है। इसी तरह अनेक गीतों में निराला ने लोक धुनों का असर ग्रहण किया है। कहीं कहीं फिर उनकी रूपकात्मक योजना की आहट सुनाई पड़ती है, जैसे वरद हुई शारदा जी हमारी वाले गीत गुंज के पहले ही गीत में। लेकिन यह प्रवृत्ति धीरे धीरे कम से कमतर होती गई है। जो चीज़ कम नहीं हुई है वह है उल्लास की अनुभूति। जैसे बार बार कवि वसंत के प्रभाव से फड़क फड़क उठता है और उतनी ही बार उसे शब्दों में ध्वनि के आरोहों में बांधने और रूपायित करने का प्रयत्न करता है। आह्वान से आश्चर्य और ललक से प्रगाढ़ तन्मयता तक की यही यात्रा कवि की वसंत यात्रा कही जा सकती है। इस यात्रा का अवसान वसंत देवता द्वारा अपनी कूची के सारे विश्व को रंग देने में होता है। जिस तरह निराला अपनी काव्य यात्रा में अर्थ सौंदर्य से धीरे धीरे ध्वनि के अरूप क्रीडात्मक सौंदर्य की ओर अग्रसर होते गए हैं, उसी तरह वसंत वर्णन में वह प्रकृति सौंदर्य की स्थूलता से रंग सौंदर्य की अरूपता तक धीरे धीरे पहुँचते हुए दिखाई देते हैं। पृष्ठ संख्या 256। कूची तुम्हारी फिरी कानन में फूलों के आनन आनन में फूटे रंग बसंती गुलाबे लाल पलाश लिए सुख स्वाबी नील श्वेत शतदल सरके जल चमके हैं केसर पंचानन में।